लिख लिख भेजी अनगिन पाती, फिर भी नहीं निठुर तुम आए। लिख लिख भेजी अनगिन पाती, फिर भी नहीं निठुर तुम आए। दिन फिर गए बिजन बगिया के, घिर घिर आए घन कजरारे। महक उठी मेहंदी की क्यारी क्यारी, चहक उठे चौबारे। आंगन की निम्बिया बौराई, फूल उठी घर की अंबराई। सब सब बोले तुम ही न बोले, बैठे एक हम ही मन मारे। हंसी खो गई खुशी खो गई, नींद बिकाई चैन गवाए। किसके मंदिर करूँ आरती, किसके द्वारे करूँ समर्पण। किसको भेजूँ मौन संदेशे, किसको भेजूँ नेह निमंत्रण। लिख लिख भेजी अनगिन पाती, कोई नहीं लौट कर आती। सब सब आए तुम ही ना आए। ऐसी बान पड़ी किस कारण, इतनी इतनी लगन धराई, इतने इतने जतन कराए। गुमसुम चुप रह गई देहरी, खटक खटक रह गई किवरिया। झूम झूम झूके उठे बदरवा, बरस बरस रह गई बदरिया। जब जब आई याद तुम्हारी, बड़ी और मन की लाचारी। कसक कसक रह गया करेचवा, बीच गई बेरहम उमरिया। सौ सौ बार संदेश पठाए, फिर भी नहीं निठुर घर आए। लिख लिख भेजी अनगिन पाती, फिर भी नहीं निठुर तुम आए। इतने खत भेजे पर तुम ना आए। मन उदास है, हंसी खो गई है, नींद फिट गई है, चैन नहीं रहा, क्या करूं? इतने संदेश भेजे, क्या कारण है तुम्हारे मौन का? अब और क्या करूं? सब तो आ गए, तुम ही ना आए। इतनी लगन, इतने जतन, क्या करूं? मन लाचार। सौ सौ बार संदेश पठाए, फिर भी नहीं निठुर घर आए। कब आओगे? खत लिखा जा रहा है। किसे? बाबा को? साजन को खत लिखा जा रहा है, पर वो आ नहीं रहा है। खत लंबा है। बाबा कहते हैं, कितना बड़ा खत लिखो? छोटा सा खत लिखो, उसमें सब कुछ आ जाता है। पर यदि ओके ना हो तो फिर क्या करो? लिखो ही नहीं। फिर लिखो कब? जब ओके हो जाओ तब लिखो। आज सुबह की अव्यक्त वाणी। राम कहानियां नहीं लिखो। क्या लिखो? अपनी स्थिति का वर्णन, बस इन दो। ओके इतना ही लिखो। पर यदि ओके ना हो तो फिर क्या करें? पहले ओके हो जाओ तो कितना टाइम लगेगा उसमें? ओके नहीं है तो ओके मत लिखो। एक बहुत प्रसिद्ध पादरी किसी गांव में आता है। उसका प्रवचन है सत्य पर, पावर ऑफ ट्रुथ। ढेर सारे श्रोतागण चर्च में इकट्ठा हुए हैं। वो कहता है, इससे पहले कि मैं अपना भाषण चालू करूं, मुझे एक प्रश्न पूछना है। बाइबल में जो चैप्टर ऑफ मैथ्यू है, मैथ्यू का जो अध्याय है, उसमें 36वां अध्याय किस किस ने पढ़ा है? सभी लोग हाथ खड़े करते हैं। वो देखकर उसे भीतर दुख होता है, क्योंकि मैथ्यू के अध्याय में 28 अध्याय चैप्टर्स है टोटल। ये वैसा ही है जैसे कोई कहे कि गीता का 20वां अध्याय किसने पढ़ा है और सब हाथ खड़ा करे। तो कहता है, मैथ्यू का 36वां अध्याय किसने पढ़ा है? तो सभी हाथ खड़ा करते, हमने पढ़ा है। वो कहता है, आप ही वो लोग हो जिनके लिए ये भाषण है, क्योंकि भाषण वो दे रहा है सत्य पर। पर वो देखता है सभा में एक व्यक्ति ऐसा है जिसने हाथ नहीं उठाया। उसे अंदर से खुशी होती है उसे देखकर, एक तो सच्चा आदमी निकला। जबकि मैथ्यू में टोटल 28 ही चैप्टर से, और ये सब लोग 36वां चैप्टर ये सब लोगों ने पढ़ा है। और हाथ क्यों खड़े किए सबने? दूसरे खड़े कर रहे, हम क्यों पीछे रहे? ये अहंकार, अपना भी तो अहंकार है। हम इतने समय से चर्च में आ रहे और हमने मैथ्यू का 36वां चैप्टर नहीं पढ़ा, ऐसे कैसे हो सकता है? हमने पूरी बाइबल पढ़ी है। वो पादरी उस व्यक्ति के साथ पास जाता है, कहता है, आपने हाथ नहीं उठाया? तो कहते हैं, आपने कुछ प्रश्न पूछा, मुझे सुना ही नहीं आया एक्चुअली। क्या पूछा आपने? 36वां अध्याय मैथ्यू का? अरे वो तो मैं रोज पढ़ता हूं। ओके है नहीं, पर ओके कह रहे हैं। बाबा कहते हैं, लंबा नहीं लिखो, जो है वो लिखो, जैसे हो वैसे लिखो, सच्चाई, ट्रुथ। और परमात्मा सत्य का सूर्य है। यदि हम झूठ में जी रहे तो हम उससे बहुत दूर है। झूठ की जो चट्टाने हैं वो धीरे धीरे पिघलती जाए, जैसे जैसे हम उसके नजदीक पहुंचे। झूठ की चट्टाने, अहंकार की बर्फ की चट्टाने, अगर अध्यात्म में चलते हुए अहंकार ही बढ़ रहा है, अर्थात हम परमात्मा से दूर जा रहे। हम इतना बजे अमृत वेला करते हैं, हम इतनी बार मुरली पढ़ते हैं, इतने बजे उठो बहुत अच्छा है, इतनी बार मुरलियां पढ़ो बहुत अच्छा है, पर वो सारा कुछ यदि हमें अहंकार से भर रहा है तो क्या हो रहा है? हम उसके नजदीक नहीं जा रहे। परमात्मा के नजदीक जाने की निशानी है निरंकारी होती जाए चेतना। अहंकार की जो बर्फ की चट्टाने हैं वो धीरे धीरे पिघलती जाए, तो ही कहा जाएगा व्यक्ति धर्म में अग्रसर हो रहा है, अध्यात्म में आगे बढ़ रहा है। नहीं तो क्या हो रहा है? कहीं और ही जा रहा है, कहीं और ही भटक रहा है। हमने भी मैथ्यू का 36वां अध्याय पढ़ा है, पढ़ा ही नहीं, मैं तो रोज ही पढ़ता हूं। गीता का हमने भी 20वां अध्याय पढ़ा है, बहुत अच्छा है, 18वें अध्याय से भी अच्छा है। लिख लिख भेजी अनगिन बाती, फिर भी निठुर तुम ना आए। खत बहुत लिख दिए तुम नहीं आ रहे हो, वो तो आया ही हुआ है, हम ही दूर है। आज हम चर्चा करेंगे जब ओके ना हो तो क्या किया जाए। संपूर्ण ज्ञान है, योग का पता है, धारणाओं का पता है, सेवाओं का पता है, चारों ही विषय की संपूर्ण जानकारी है। पांचवें विषय की भी होगी, बाबा के फिफ्थ सब्जेक्ट में कौन कौन पास है तो हम भी हाथ खड़ा कर देंगे। क्यों? क्योंकि सबने किया है। तो ये जो ओके है, जब ओके ना हो तब क्या किया जाए, और ऐसा होगा भी। जरूरी नहीं है कि सारे तीव्र पुरुषार्थी, सारे योगी, सारे तपस्वी हमेशा ही तीव्र पुरुषार्थी रहे, योगी रहे, तपस्वी रहे, आगे ही बढ़ते रहे। जीवन में हजारों चीजें होती रहती है, विविधतापूर्ण है ये जीवन, कलाइडोस्कोपिक। एक कलाइडोस्कोप होता है ऐसा, देखा है? टेलीस्कोप नहीं, ऐसा होता है ना एक था हमारे पास, हाँ ये ऐसा होता है, दूरबीन जैसा। इसको इसमें से देखो तो रंग बिरंगी कांच दिखाई देते हैं, बच्चे देखते हैं ना इसमें अलग अलग अलग, उसको घुमाओ तो कांच कांच दिखते हैं अलग अलग रंग के, कैलाइडोस्कोप। तो जीवन भी ऐसा ही है, बहुत सारे रंग है उसके। तो चाहे कोई कितना भी बड़ा योगी हो, तपस्वी हो, नियमित हो, आगे बढ़ रहा हो, फिर भी कभी कभी, बाबा को कभी कभी शब्द पसंद तो नहीं है, परंतु फिर भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति आएगी कि जिसमें हम ओके नहीं रहेंगे, तब क्या किया जाए। तो उसकी कुछ बातें आज देखेंगे। बाबा ने कहा पहले ओके हो जाओ, उसके बाद में खत लिखना ओके, पर जीवन नहीं लगा देना ओके होने में पूरा, उससे तो वो लोग अच्छे ही है। मैथ्यू का 36वां अध्याय हमने पढ़ा है, ठीक है, ऐसी 14 बातें हम देखेंगे आज। सबसे पहला, स्वीकार करो कि आज मैं ओके नहीं हूं। जरूरी नहीं हर बार जीती हो, हार भी होगी। जरूरी नहीं हर बार सफलता मिले, असफलता भी मिलेगी। जरूरी नहीं हर बार स्तुति ही हो, अच्छा काम करने के बाद में भी निंदा होगी। कल सुना था ना, कुत्ता आ गया सामने, उसने क्या सोचा था, फूल मालाएं चढ़ाई जाएगी, पर क्या हो गया, उल्टा हो गया। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। इस ड्रामा में हर आत्मा की हाईएस्ट पॉइंट आता है, कभी लोएस्ट पॉइंट आता है, होगा ये। इसके लिए नहीं तो जो परफेक्शनिस्ट होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, हमसे कोई भूल होनी ही नहीं चाहिए, एक रीति से बहुत अच्छा है ये, पर जो परफेक्शनिस्ट होते हैं वो दुखी होते हैं ज्यादा अंदर से, क्योंकि चीजें वैसी नहीं होगी जैसा हम चाहते हैं। हर चीज को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, यहां बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल के बाहर है, इसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। ये इसलिए नहीं कि हम हताश हो जाए, दिल शिकस्त हो जाए, उसके लिए नहीं। कभी ओके ना हो, ओके ना होने में क्या क्या आएगा? ओके नहीं है मतलब क्या? दुख में है, ऊपर से तो खुश है, ऊपर से तो हंस रहे, सबके लिए अच्छा है, अमृत वेला कर रहे, मुरली सुन रहे, सुना रहे, कोर्स कर रहे, करा रहे, सब कुछ कर रहे, सारी सेवाएं जारी है, पर अंदर से एक दुख का बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, एक सूक्ष्म अतृप्ति है, सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, जो शायद हमें भी पता नहीं कि वो है, पर है, अज्ञात सी, अज्ञात सा दुख, अज्ञात सी अतृप्ति, सूक्ष्म सा एक बेचैनी है, हलचल है, चिंता है। तो सबसे पहले तो स्वीकार करो कि इस जीवन में हार भी होगी, इस जीवन में दुख भी होगा, इस जीवन में हानि भी होगी, इस जीवन में अप्रसन्नता, असंतुष्टता, अतृप्ति भी आएगी, क्योंकि हमने अपने ऊपर ऐसे बड़े बड़े सामान थोप रखे हैं कि उससे हम जरा सा भी हटते हैं तो अंदर में बेचैनी होती है, दुख होती है, ऐसा लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, संघर्ष है अंदर, एक द्वंद चल रहा है, अजीब सा, एक तरफ ज्ञान है, एक तरफ प्रैक्टिकल जीवन है। सुबह अमृत वेला और मुरली के समय ये ठीक लगता है, पर जब जीवन चालू होता है, दिन चालू होता है, तो यहां कुछ और ही घटनाएं घटती है, इन दोनों का कोई तालमेल नहीं है, और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं हम ही गलत है, हम में ही दोष है, हम ही ठीक नहीं है, और वो भाव हमें और नीचे नीचे ले जाता है, नीचे 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 ले जाता है। इसलिए सबसे पहली विधि, ओके जब ना हो, दुख हो, कुछ भी हो, तो पहले स्वीकार करो, अपना लेबल ठीक रखो कि हाँ ये है, मुझे नहीं आता है, मैंने नहीं पढ़ा है 36 चैप्टर, मान लो। अगर हम दूसरों को सुनाते हैं मैं संतुष्ट मन ही हूँ, इसका अभ्यास करो, और रूम पर जाकर हम ही अतृप्त है, तो एक द्वंद्व हो जाता है। तो सबसे पहले तो स्वीकार करो, जब भी ओके ना हो, हमें बहुत सारी स्थूल चीज़ों की सहायता लेनी पड़ेगी। यहाँ ओके ना हो अर्थात ना योग करने की इच्छा है, ना ज्ञान में कोई रुचि है, ना ज्ञान सुनाने की इच्छा हो रही है, धारणा ठीक है, जो चल रहा है चल रहा है, धारणाओं में सेवा की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, एकदम ही मन उदास हो गया है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आएगी, होमवर्क तो जो दिया वो होमवर्क सुनना ही नहीं है, तो करने का तो सवाल ही नहीं, ऐसी स्थिति भी आएगी। तो सबसे पहले तो स्वीकार कर लो कि हाँ ऐसा है, इसको मैं स्वीकार करता हूं कि ऐसा भी हो रहा है, ये भी मैं ही हूं, ये भी मैं ही हूं। हर व्यक्ति में अनेक व्यक्तित्व है, बहुचित्तवान है हम, पॉलीसाइकिक, एक मन में अनेक मन समाये हुए हैं, हम बहुरूपी भी है, कितने सारे हैं हम, हमें ही पता नहीं इसमें से मैं कौन हूं, सत्य कौन है इसमें से, इतने सारे रूप धारण किए, योगी हूं या भोगी हूं, कंफ्यूजन है, या ढोंगी हूं। तो सबसे पहले जब भी ओके न लगे तो स्वीकार कर लो, हाँ ठीक है, एक्सेप्टेड, ऐसा भी होगा। दूसरा, स्थूल चीजों की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि ये वो अवस्था है कि जिसमें कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, उदासी आ गई है, अजीब सी उदासी। सेकंड, ये जो बातें बता रहे हैं ये साइंस की बताई हुई बातें हैं, साइकोलॉजिस्ट की बताई हुई बातें हैं, मनोविज्ञान की बताई हुई बातें हैं, कुछ कुछ अध्यात्मिकवादियों की बताई हुई बातें हैं। दूसरा कहते हैं बाथ, लॉन्ग रिफ्रेशिंग बाथ, स्नान, शाही स्नान, जब अच्छा न लगे तो क्या करो, स्नान करो। उस दिन भी कहा था सॉल्ट वाटर बाथ, नमक के पानी से स्नान, नमक डाल दो, वो क्या हो गया, ओशन वाटर हो गया, समुद्र का पानी हो गया, खारा पानी हो गया, उसमें बहुत ऊर्जा होती है एनर्जी बढ़ने के लिए, और वो स्नान करते करते ये सोचना कि जो भी मेरे अंदर निगेटिव एनर्जी आई है सब क्या हो रही है, बहती हुई निकल जा रही है, वो एक एक पानी का कतरा है उसमें ऊर्जा है, वो ऊर्जा मेरे शरीर पर पड़ रही है, मुझ में ऊर्जा भर रही है। ये स्थूल कार्य है। एकदम सूक्ष्म कहोगे कि नहीं, मैं तो खुश मिजाज आत्मा हूं, मन स्वीकार नहीं करता है, उदास है इस समय, ओके नहीं है, इसके लिए क्या है सेकंड मेथड, शाही स्नान कहते हैं इसको, घिस घिस के स्नान करो थोड़ा एक घंटा ये दूसरी मेथड। तीसरा क्लीनिंग, क्या चालू कर दो, सफाई अभियान। अलमारी है, सारे कपड़े निकालो फिर रखो, क्या चालू करो, वो कमरा जो कभी साफ सफाई नहीं की, किताबों को साफ करो, कपड़ों को ठीक रखो, जूतों को ठीक रखो, वो हर चीज जिसकी सफाई की आवश्यकता है उसमें मन को लगा दो, क्योंकि ना तो योग करने की इच्छा हो रही है, ना तो मुरली पढ़ने की, ना तो कोई क्लास, ना किसी क्लास में जाने की, सब कुछ व्यर्थ लगने लगा है, और जो वहां जाते हैं सब कुछ मूर्ख दिखाई देने लग रहे हैं। जब ऐसा दिखाई देने लगे तो मन को, हमको ये भी समझना है फर्स्ट स्टेज में जो कहा एक्सेप्ट में, एक और चीज़ है कि ये समझो कि ये मन की नित्य अवस्था नहीं है, थोड़ी समय के बाद मैं अपनी ओरिजिनल स्टेज में आ जाऊँगा, पर मुझे इस स्टेज को किसी भी हालत में इससे पार निकलना है, और ये ध्यान रखना है कि इस स्टेज में मेरे से कोई विकर्म ना हो जाए, इसलिए हमको बिजी कर देना है अपने आप को किसी और चीज़ में। तो तीसरा बताया क्या करो, सफाई क्लीनिंग, सफाई में लग जाओ। अगला एक्सरसाइज, क्या करना है एक्सरसाइज, उसमें सब कुछ आएगा, या एक्सरसाइज या तो, और वो भी ऐसी वैसी एक्सरसाइज नहीं करना, अच्छी एक्सरसाइज करो पूरी, टाइम लगा के एक घंटा, 1 आवर वर्कआउट, 2 आवर्स वर्कआउट, 90 मिनट्स वर्कआउट, ये करते करते आएगा, मूड बनेगा। एक्सरसाइज ऐसी चीज है कि जिसमें हम वर्तमान में जीते हैं। किसी को कहो मुरली पढ़ो, वो मुरली नहीं पढ़ रहा है, उसका मन कहीं और है, भविष्य में या अतीत में, पर आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो तब आप ना तो अतीत जा सकते हो ना तो भविष्य में, वहां दर्द हो रहा है, एक्सर्ट, या तो एक्सरसाइज या तो योगासन या तो प्राणायाम या तो थाई ची शिगोंग, उस पर भी आएंगे, कुछ भी हो सकता है, स्विमिंग रनिंग ये कुछ भी, परंतु अपने मन को उसमें लगाना है, बजाय इसके कि एक ही कमरे में, जब व्यक्ति उदास हो जाता है तो क्या करता है, बिल्कुल चुप बैठ जाता है, उसको किसी से बात करने की इच्छा नहीं, और उसकी उदासी बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। उदास व्यक्ति कमरों महीनों महीनों तक घर से बाहर नहीं निकलते, इच्छा ही नहीं होती है उनको, किसी से मिलने की इच्छा नहीं, किसी से बात करने की इच्छा नहीं, कुछ भी करने की इच्छा नहीं, और ये अवस्था, ये तो एक बीमारी का रूप है उदासी, मेजर डिप्रेशन। हम यहां बात कर रहे हैं क्षणिक आया हुआ डिप्रेशन, किसी ने कुछ बोल दिया एकदम ही उदास हो गए, ऐसी तीखी बात बोल दी मिर्ची वाली, कितना पानी पिया फिर भी जलन कम नहीं हो रही है तो क्या करना है एक्सरसाइज, उसके बाद में इमोशंस आउट, अपने इमोशंस को दबाना नहीं है, रो लो, क्या करो क्राई, बहुत अच्छा है रो लेना, ये कि एकांत में जाओ और रोना चालू करो जोर जोर से, बजाय इसके कि आंसुओं को रोना प्रूफ बनो, रोने की टंकी योग के धूप से सुखा दो, ये सब बाजू में रखो तुमको रोना नहीं, अम्मा मरी हलवा खाओ, ये मरी हलवा खाओ, पर ये जो है ना, इसको कहते हैं साइकोलॉजी में कैथारसिस। जो भी अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ते हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर दमन होता है, अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं, या तो अपने अंदर जो उमड़ रही फीलिंग्स है, दुख है, उसका दमन कर देते हैं, दमित, किसी की मृत्यु हो गई दबा दिया, रोएंगे ही नहीं, और फिर वो न रोना, वो आंसू उन आंसुओं के ढेर पर खुशियों के भवन खड़े करते हैं, पर नीचे की नींव कौन सी है, आंसुओं की, जिसको अंदर दबा के रखा है। इसके लिए अचानक एक दिन पता चलता है कि ज्ञान ही छोड़ दिया किसी ने, अब तक ठीक चल रहा था, एक दिन अचानक पता चलता है शरीर ही छोड़ दिए, सब कुछ ठीक था। व्यक्ति खुदकुशी करते हैं, जैसे अभी अभी एक उदाहरण है, सबको भेज दिया, बच्चों को कहा कि जाओ तुम, पत्नी को कहा तुम उधर जाओ, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी, किसी को सामान लेने भेज दिया, किसी को कुछ लेने भेज दिया और फांसी लगा दी। दुख एक ऐसी अवस्था है कि होपलेसनेस कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ऐसा लगता है सब व्यर्थ हो गया है, क्यों मैं जी रहा हूं। इसीलिए हमारे पास कुछ हथियार चाहिए, स्थूल हथियार चाहिए जिनका हम प्रयोग कर सके, नहीं तो यह दुख बढ़ता जाएगा। इसलिए इमोशंस आउट, फीलिंग्स आउट, इसको कहते हैं कैथारसिस। ये कैथारसिस बहुत जरूरी है, रोना। तो क्या करो, जाके रो लो, अच्छी तरह से रो लो, पूरा आंसू दबा के नहीं रखो, बह जाने दो। तो क्या होगा, हल्कापन आएगा। उसके बाद में गेम्स, जब भी मूड ठीक ना हो क्या करो, खेलो। कौन से गेम्स खेलेंगे, जितना हो सके आउटडोर गेम्स, कुछ भी जितना हो सके आउटडोर्स, हम नहीं कर सकते तो इंडोर गेम्स, पर गेम्स। इसमें क्या होती है, एनर्जी होती है। एक खेलते खेलते ही खेलते खेलते क्यों लोग खेलते हैं, एक उनके जैसे ही हम खेलते एक्सरसाइज करते हमारे ब्रेन में हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होते, वही हार्मोन जो मेडिटेशन में रिलीज होते हैं। खेलते ही रहो, लोग बैडमिंटन खेलते हैं घंटों घंटों खेलते रहते, फुटबॉल खेलते हैं घंटों घंटों खेलते रहते हैं, क्यों, और थकते नहीं है क्योंकि थकान खत्म हो जाती है, उसमें एनर्जी आ जाती है, कॉन्सेंट्रेशन लगता है। फुटबॉल कितना एनर्जी से खेलते हैं लोग, तो खेल और, पर वो अचानक जब उदास हो तभी खेल खेलने जाना, ऐसा नहीं, रोज ही थोड़ा टाइम, ताकि आदत बनी रहे। फिजिकल एक्टिविटी, मूवमेंट जो है ना, शरीर को मूवमेंट चाहिए, बॉडी लव्स टू मूव। ये जो शरीर है इसको मूवमेंट चाहिए, कई लोग मूवमेंट ही नहीं करते, जॉइंट्स को मूवमेंट ही नहीं है, हर पूरे शरीर की मूवमेंट होती रहे तो ही वो शरीर ठीक रहेगा, उसमें एनर्जी का फ्लो होगा, एनर्जी की डांस होगी, डांस ऑफ एनर्जी। सबसे अच्छी एक्सरसाइज तो डांस है, सबसे अच्छी एक्सरसाइज कोई भी थाई ची भी क्या है, एक डांस ही है, स्लो मोशन डांस। और उसमें जितना रिलैक्स होके डांस करेंगे उतनी, बाबा क्या कहते हैं, उदास हो जाओ तो बाथरूम में जाके डांस करो। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, विदेशियों से मुलाकात, ये भी विदेशियों से ही मुलाकात है। आज की मुरली, विदेशियों को लिखना बहुत पसंद है, बहुत होशियार है, पर शॉर्ट एंड स्वीट, लंबा लंबा मत लिखो, लिखना भी सीखना चाहिए। तो क्या बताया, कैथारसिस और उसके बाद में गेम्स, उसके बाद में नेक्स्ट हॉबीज, आदतें। हॉबीज अर्थात क्या कहते हैं उसको, शौक। उस समय ज्ञान सुनाना अच्छा नहीं लगता है, ज्ञान की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है, ज्ञान से जो जो संबंध, अगर कोई ज्ञान सुनाने आए एकदम एलर्जी, बंद करो अपना ज्ञान, बहुत सुन लिया क्या, बहुत सुना लिया, इतने सालों से सुना रहे लोगों को, वो दूसरों के लिए था, कैसे खुश रहे, सुख शांति का अनुभव कैसे करे राजयोग से, वो उनके लिए था, हम ही दुखी है, अब क्या करें। तो क्या करना है, हॉबीज, कौन कौन सी हॉबीज, कुछ भी हॉबीज होती, गार्डनिंग, कुकिंग, पेंटिंग, कार्टून, कुछ भी, पर हमारे पास ऐसी हॉबीज हो, लिखना, कविता लिखो, कुछ भी म्यूजिक, ये सारी चीज़ हो, बांसुरी बजाओ अगर आता है तो। क्योंकि ज्ञान, जब बहुत व्यक्ति ज्ञान में डूबा रहता है ना, तो ज्ञान की अपच हो जाती है, इनडाइजेशन, बदहजमी, सुनना नहीं चाहते, कोई भी ज्ञान रिलेटेड बातें नहीं सुननी हमको, कुछ दूसरा बताओ। पर ऐसा भी ना हो कि सीधा विकार की तरफ चले जाए, एकदम नीचे ही ना गिर जाए, ऐसा कि जो ट्रांजिशन फेज है ये थोड़े समय के लिए है, बस इसको हो सकता है कि रात भर सो जाएंगे तो दूसरे दिन ठीक हो जाएंगे, पर वो जो पीरियड है, ये जो आ गया है रात को 8 बजे, सोने से 2 घंटा पहले आ गया है, अब ये 2 घंटे में कोई पाप ना हो जाए, बस 2 घंटे में किसी का नुकसान ना कर दे, 2 घंटे में कोई ऐसा SMS ना डाल दे कि जिसका खुद ही को पश्चाताप करना पड़े, ऐसा लेटर ना भेज दे किसी को, वही तो डिलीट भी तो नहीं होते मेल तो डिलीट भी नहीं, एक बार भेजा तो भेजा, तो क्या करे, कैसे वापस ले उसको। हॉबीज, ऐसी हॉबीज हो जो पहले से हमारे पास हो रोज की, कि जिसमें हमें अच्छा लगता है, जैसे लोगों को गार्डनिंग बहुत पसंद है, करते हैं जानकारी उस तरह की। उसके बाद में नींद, क्या कर जा करना है, ऐसा कुछ हो जाए तो ये सबसे बेस्ट मेथड है जाके बस सो जाओ, नींद नहीं आई तो बस थोड़ी आई, आ तो जाएगी थोड़ी देर में, आधे घंटे में आ जाएगी, बस सो जाओ। क्योंकि नींद में क्या होता है, हम आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है, जैसे कहीं बहुत दर्द है शरीर में, दिन दर्द दर्द दर्द, और जब सो गए तो याद रहता है, जब आँख खुलती है तो सबसे पहला ध्यान उस दर्द की तरफ जाता है, फिर मतलब नींद में आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है, हर चीज से डिटैच हो जाती है, पास से फ्यूचर से। तो नींद एक बहुत अच्छी विधि है, सो जाओ बस। वीर तुम अरे रहो, रजाई में पढ़े रहो तो नींद, उसके बाद में जर्नलिंग, जर्नलिंग अर्थात डायरी लिखना, अपने फीलिंग्स को लिखो, उसको लेबल करो, हाँ उदासी को लिखो कि आज मुझे उदास महसूस हो रहा है, रोज की, इसके लिए रोज का डायरी लिखना, इस भट्टी की सबसे पहले दिन एक बात बताई थी, 10 बातों में रोज की डायरी लिखनी है, क्या लिखना है उसमें, अपनी दिनचर्या लिखनी है, आज क्या क्या हुआ, चालू करो वहां से लिखना, आज अमृत वेला कितने बजे उठा, फिर उसके बाद में मुरली, फिर जो भी है नाश्ता, फिर किसी से मिलना, फिर सेवा, फिर कोई हलचल, फिर आंसू अगर आए तो आंसू के बारे में लिखो, उदासी अगर हुई तो उसके बारे में लिखो, सब कुछ लिखो, लास्ट में बाबा गुड नाइट, बस यहाँ एंड हो, ये हम अपने लिए लिख रहे हैं, वो पढ़े ना पढ़े पर लिख दो रोज। अगर डर लगता है किसी का नाम लिखने में तो ये ऐसा डाल दो, ये इसने ऐसा किया, एक्स करो, वाई करो, जेड करो, कोड वर्ड्स, डर लगता है ना, डायरी किसी के हाथ में आ गई तो हमारी पूरी जन्म कहानी, जीवन पत्री, जन्म कुंडली किसी के हाथ में नहीं आनी चाहिए, किसी को पता ना हो कि हमने 36 चैप्टर ऑफ मैथ्यू नहीं पढ़ा है, इसलिए चुपचाप हाथ खड़े कर दो। तो क्या करना है, जर्नलिंग, उसमें अपनी भावनाओं को लिखना कि ये आज लग रहा है, और जरूरी नहीं हम अभी इतने महान और योगी तपस्वी नहीं बने कि कोई हमें कुछ कह दे और हमें कुछ भी बुरा ना लगे, बुरा लगता है, हर एक को बुरा लगता है, आगे से तो दिखाता है कि मैं एकदम अचरड़ हूं कि मुझे सब लोग इतना कुछ कुछ कह रहे हैं पर मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि हम सब इमोशनल प्राणी हैं, इमोशंस में जीते हैं, कोई हर्ट करता है तो दुख होता है, कोई कुछ बोलता है तो दिल टूटता है, पर हमारे पास समान है, मैं अचल अडोल आत्मा हूं, अंगत समान, और फिर ऊपर से तो इधर से दुखी है अंदर से, और ये समान का अभ्यास कर रहे योग में बैठकर, मैं अचल अडोल हूं पर अंदर से अंदर से दुखी है, उदास है, उस दुख को, उस उदासी को भी स्वीकार करो, ये हो रहा है इस समय की, ये सच्चाई है, हो सकता है थोड़ी देर में ये ना रहे पर इस समय यही सच्चाई है कि मुझे उदास फील हो रहा है, हर्ट फील हो रहा है, होपलेस फील हो रहा है, व्यर्थ का आक्रमण हो रहा है, मन बेचैन है, उसको लिखो, जर्नलिंग एक अभ्यास है। उसके बाद में काइंडनेस, क्या करो इसमें, किसी के लिए कुछ करो, किसी की मदद करो, सेवा करो, किसी के लिए कुछ करो, ये एक ऐसा कृत्य है कि जिससे हमें खुशी मिलती है, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो किसी की मदद कर दो वो वाली नहीं किसी की कोई भी मदद कर दो, वो व्यक्ति बाकी सब चीजें भूल जाएगा, वो की हुई मदद है ना वो कभी नहीं भूलता है, और किस समय हमने उसकी मदद की थी वो टाइम वो कभी नहीं भूलता है। इसके लिए दया, काइंडनेस, बी काइंड। उसके बाद में नेक्स्ट, अपने आप से प्रेम करना है, अपने आप को लाइट कर देना है। लाइटन योर सेल्फ मतलब क्या? मतलब हर एक में फॉल्ट है, मुझ में भी है। ऐसा नहीं कि हम सीधा ब्रह्मचारी बन गए, तपस्वी बन गए, कितने समय तक अपवित्रता में जिए हैं, तो आक्रमण होगा। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी साधना है, प्यूरिटी तो उसके ऊपर की साधना है, वो एक दिन में नहीं बनेगा, बहुत सारी बातें होगी इस जन्म की नहीं तो पूर्व जन्म के कुछ संस्कार है जो यहाँ पर आएंगे बीच बीच में। कभी भी आ सकते, योग में आ सकते। सूरज भाई जी ने एक बार बताया था, एक भाई ऐसे अनुभव उनको बताया कि जब मैं बाबा मिलन में बैठा था, 3 दिन मौन रखा, 3 दिन तपस्या की और फिर बाबा मिलन, बहुत पुरानी कहानी है, भाई साहब ने एक बार बताई थी, और जैसे बाबा आए उसको लगा एक मशीन गन लूँ और सबको उड़ा दूँ जितने लोग हैं, और बस ये विचार छूट ही नहीं रहा है। उधर बाबा आए हैं, अब बाबा मिलन की उसने इतनी तैयारी की, पर उसको लगा एक एक को यहाँ पे मार दूँ, अब बस उसका पूरा बाबा मिलन शूटिंग में चला गया और फिर उसको पश्चाताप हुआ, ये क्या हो गया बाबा ये पता नहीं कहाँ से क्या आ गया, कभी ना सोचा न कभी आज तक इसके बारे में कभी ख्याल था मन में, न मन न चित, ये कहाँ से आ गया, और इतना खतरनाक विचार, किसको बताएंगे तो क्या कहेंगे। तो हमने इतने गुल खिलाए हैं जन्म जन्म में कि कब क्या निकल के बाहर सामने आ जाए पता ही नहीं चलता है। इसलिए लाइटन योर सेल्फ या लव योर सेल्फ, अपने आप से प्रेम करो। ठीक है, ये भी मेरे ही व्यक्तित्व का एक हिस्सा है, किया तो मैंने ही है, ये भी सामने आएगा और आया है अब, पर एक ही चीज़ याद रखना, ये थोड़ा समय चलेगा। जैसे सुख अनित्य है, ये दुख भी अनित्य है, ये थोड़ा ही समय चलेगा। हो सकता है मुझे इस समय स्थिर रहना है, बस इसको देखना है, वो चला जाएगा आके, ज़्यादा समय ये चलेगा नहीं। उसके बाद में मूव आउट, स्थान बदल दो। क्या कर दो? ये सबसे पावरफुल विधि है। जहाँ बैठ के व्यर्थ संकल्प चल रहे क्या कर दो? स्थान को बैठ दो। अगर अमृत वेला ही चल रहे तो उड़ जाओ उस योग के कमरे से और घूमना चालू करो इधर उधर, कहीं पर भी हो सकता है ये, पर इतना भयंकर तूफान आ रहा है उस स्थान को चेंज कर दो उस समय। पर अगर रात को 12 बजे हो रहा है तो खटिया के नीचे चलना इसके लिए कई बार मरीज होते हैं ना जो ठीक नहीं होते, तो उनको कहा जाता है भाभी इनको कोई ऐसे स्थान पर ले जाओ, कोई हिल स्टेशन, कई लोग यहाँ हिल स्टेशन में माउंट इसलिए आते हेल्थ के लिए कि वहाँ ठीक नहीं हो रहे, मुंबई में बहुत इलाज करा लिया, अब यहाँ आना चाहते, 10 दिन यहाँ रहेंगे शांति से, यहाँ की फ्रेश एयर मिलेगी तो थोड़ी हीलिंग फास्ट होगी। तो चेंज एटमॉस्फियर, ये एनवायरनमेंट को चेंज कर दो, कमरे को बदल दो, निकल जाओ उससे बाहर। एक कमरे में बंद है और वहीं पे दुखी हो रहे, दुखी हो रहे, दुखी हो रहे, उदासी के विचार आ रहे हैं। किसको आ रहे? जो लंबे समय से ज्ञान योग और तपस्या और सेवाओं में है। सादी आत्माओं की बातें नहीं चल रही हैं यहाँ, ये वो आत्माओं की बातें चल रही है जो तीव्र पुरुषार्थी है, तीव्र, जिनको अपने संपूर्णता का निरंतर ख्याल रहता है, उनकी बातें चल रही है। सादी आत्मा, संसार की आत्माओं की बातें, ये संसार की आत्माओं के लिए नहीं है, ये यहाँ की है, जो 10-10 बार मुरलियाँ पढ़ते हैं, जो योग में हजार कई भट्टियाँ कर चुके हैं, हजारों बार बाबा मिलन मना चुके हैं, भट्टियाँ करा चुके, की है कराई है, खुद की है कराई है, भाषण दिए हैं, खुद सुने हैं, सब कुछ किया है, तो वो सब उनके लिए चल रहा है। तो क्या करना है? स्थान को बदल दो। उसके बाद में नेक्स्ट, प्रकृति। ये बहुत पावरफुल विधि है। इसके लिए प्रकृति का रोज प्रकृति के सानिध्य में जाना है, रोज। ऐसे नहीं इमरजेंसी में जाओ कि आज दुखी लग रहा है चलो थोड़ा पहाड़ी पर घूम के आता हूँ, नहीं, रोज ही घूमने जाओ, रोज ही पहाड़ी के संपर्क में आओ। और यहाँ तो ठीक है माउंट में सब जगह पहाड़ियाँ ही पहाड़ी है, पर जो शहरों में रहते हैं जहाँ रोड है, ट्रैफिक है, सेवा केंद्र ही बिल्कुल रोड के सामने, जहाँ पे रात भर गाड़ियाँ चलती रहती, सेवा केंद्र ऐसी जगह है कि रात भर फ्लाइट की आवाज़ें, ट्रेन की आवाज़ें आती रहती है, पर ये फिर भी हमारे हाथ में है। एकांत को चुराना है, मौन को चुराना है। प्रकृति हर जगह पर है, कहीं पर भी हम उसका अनुभव कर सकते। छत पे चले जाओ, बहुत सेवाएं हुई, बहुत सेवाएं हुई, वो 10 मिनट भी जाके आ जाओ, शांति से बैठ जाओ, तो एनर्जी आ जाएगी। आज की मुरली में है ना एकांत की बात, छोटी छोटी बातें जो है ना डिस्टर्ब कर देती है। क्या चाहिए इसलिए बीच बीच में एकांत। बिना एकांत के तो स्थूल एकांत की बात कर रहे, वो एक के अंत में खोना तो परिणाम है उसका, वो एकांत। एकांत की परिभाषा शुरू स्थूल से होती है, अंत सूक्ष्म से होती है, दोनों ही एकांत है। सूक्ष्म स्थूल एकांत, कोई नहीं है वहाँ, चुपचाप अकेले में बैठो, चलो वो भी ठीक है। तो सॉलिट्यूड, लव फॉर सॉलिट्यूड, प्रकृति में चले जाओ जब उदास लगे। और क्या करो वहां जाके मंजू बहन, क्या करेंगे वहां जाके नरेश भाई, क्या करेंगे प्रकृति में, क्या करेंगे? अच्छा पौधा लगा के आओ, नहीं और क्या करेंगे? बातें करो, किससे बातें करेंगे? पेड़ों से बातें करो, पत्तों से बातें करो, पेड़ों से, पहाड़ों से, चिड़िया से, उसका वंडर प्रकृति। आह ये कौन चित्रकार है, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन। हाँ पेड़ों की वैरायटी देखो कितनी अलग अलग वैरायटी है, एक पेड़ ना मिले दूसरे से, पेड़ों का छोड़ो एक पत्ता ना मिले दूसरे पत्ते से, बैठ के गिलहरी को देखो कैसी इधर उधर इधर उधर करती है, उसको कोई मतलब नहीं है संसार से, कोई लेना देना नहीं है। वो गिलहरी को देखो, वो चींटी को देखो छोटी सी घूम रही, उसे कोई मतलब नहीं है इस देश के पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। उसे कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, वो अपनी मस्ती में, वो दो गिलहरी कैसी लड़ती है आपस में खेल करती है, तो वो देखो बंदरों का खेल देखो कितने उछल कूद करते हैं, कितनी पावर, इतनी एनर्जी कहां से आती है इनमें, जब देखो तब उछल कूद उछल कूद उछल कूद। वही तो करेक्ट है, हमने अपने जीवन में सबसे पहले ये अनादरा पर एक बार थे तो वहां देखा ये बंदर खाते क्या है, वहां से ही यात्रा चालू की कि बंदरों में इतनी पावर कैसी, यहां से कूद रहे वहां से कूद रहे, धाड़ धाड़ धाड़, और कुछ होता भी नहीं उनको, ना फ्रैक्चर होता है ना कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो हमने सोचा, फिर सोचा ये क्या है, इनमें इतनी पावर क्यों है, वहां से तो एक नई यात्रा चालू की। तो और क्या करो, और क्या करो, लिखो वहां पर, वहां पर कुछ भी लिखो, कविता लिखो, बंदर पर कविता लिखो, सेंट एसीसी ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी, इतना प्यार था उसको, हेलो ब्रदर डोंकी, माय डियर सिस्टर बर्ड, वो सिस्टर को उसने, वो बर्ड को अपना सिस्टर बना दिया। वो जैसे जाता था तो जितने प्राणी मोर ये सब सब उसको घेर लेते थे आकर, उसकी बातें सुनते थे, उसकी बातें मानते थे। एक बार चर्च में वो प्रवचन कर रहा था तो वो उधर से बहुत आवाजें हो रही थी प्राणियों की, उसने कहा वेट लेट मी फिनिश, वो सब शांत हो गए, उसने अपना प्रवचन पूरा किया। तो इनमें जो है ना प्रेम, उनको प्रेम की भाषा समझती है जानवरों को। तो क्या करना है, आओ खिलाओ, उनको प्रेम की भाषा समझती है, हम कुछ उनको खिलाएं ना खिलाएं फिर भी वो आ जाएंगे पास में। तो जब उदास लगे तो क्या करो, प्रकृति में चले जाओ, प्रकृति की बाहों में खो जाओ। प्रकृति क्या करेगी? रिफ्रेश करेगी। और क्या करेगी प्रकृति? एनर्जी भर देगी। और क्या करेगी प्रकृति? डाइवर्शन, माइंड को डाइवर्ट कर देगी। और क्या करेगी प्रकृति? रिलैक्स। और क्या करेगी प्रकृति? ओके कर देगी। हाँ, इसलिए तो जा रहे प्रकृति के पास। पर्वत कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत हमसे क्या कह रहा है? उसकी आवाज को सुनो, कुछ शिक्षा दे रहा है वो। सोचो ये पर्वत मुझसे क्या कह रहा है। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ कर गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य ना छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नभ की तरफ देखो, कितना विशाल। जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं वो क्या करे? समुद्र के पास जाकर योग करना है नुमा शाम का। देखो इतना विशाल समुद्र, कौन है ये? भगवान परमात्मा। सागर क्यों है? उसकी अनुभूति करो वहां पर, कि ना ओर ना छोर, दूर दूर तक फैला हुआ अनंत सागर है। एकदम अनुभव होगा। सागर के तट पर बैठकर योग, पहाड़ियों पर योग, नदी के तट पर बैठकर योग, झाड़ के नीचे बैठकर योग, चट्टानों पर बैठकर योग, ये एक अलग ही अनुभव है। ये झरना, झरने के पास। कोई कहेंगे हमारे यहाँ खाली बिल्डिंग है, सीमेंट है, सड़क है, अब क्या करें? अब बोलो, गार्डन तो होंगे कहीं कहीं, वहाँ जाओ। कोई कहेंगे गार्डन है पर बहुत दूर है, छत तो है। कोई कहेंगे छत भी नहीं है, चित्र लगा दो, टीवी देख लो, या तो सड़क तो है अमृतवेला, या अमृतवेला के बाद 5 बजे 6 बजे लॉन्ग वॉक पर निकल जाओ सड़क, मूव आउट। और एक चीज वो है, किसी के साथ शेयर करो। क्या करो? किसी के साथ अपना दुख, अपना दर्द, अपनी पीड़ा, अपना हर्ट शेयर करो। शेयर करने से क्या होगा? थोड़ा सा हम कम नहीं हो जाते हमारी प्रतिष्ठा, कि हम और उदास, हम तो दूसरों को उदासी से कैसे मुक्त होना ये सिखाने वाले। ये भी हो सकता है हम फिर भी दूसरों को सिखाते हैं टेंशन कैसे मुक्त हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स कराने में एक्सपर्ट हम लोग हैं। एक बार हम एक किसी के साथ जा रहे थे, उनका प्रवचन था कहीं स्ट्रेस मैनेजमेंट पर, वो हमारे साथ जा रहे थे और गाड़ी बीच में फेल हो गई। इतने टेंशन में आ गए वो, इतना टेंशन में, इतनी बेचैनी कि टाइम हुआ जा रहा है, मेरा लेक्चर है। किस पे लेक्चर है? स्ट्रेस मैनेजमेंट पर। ऐसे कैसे ये गाड़ी क्यों ली? पहले ही समझना चाहिए था, मैंने तो पहले ही कहा था दूसरा ड्राइवर लो, ये ड्राइवर ठीक नहीं है, ड्राइवर को समझना चाहिए था पहले से गाड़ी चेक करके क्यों नहीं आए। वो यहाँ के स्पीकर नहीं है, बाहर के स्पीकर थे। तो इतना हम देख रहे थे इनका टॉपिक, और वहां जाके फिर एकदम धुआंधार लेक्चर दिया, तालियों की गड़गड़ाहट पूरे हॉल में। और फिर डांस भी कराया उन्होंने सबको, म्यूजिक फिल्मों के गीत पर, और सब एकदम बिल्कुल हल्का। फिर एक एक ने आके अनुभव भी सुनाया, अब मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है वगैरह वगैरह। अच्छी सेवा तो हो गई, पर वो जो बीच में हुआ वो भी मैं ही था, वो भी मेरा ही स्वरूप था। तो जरूरी नहीं है कि दूसरों को सिखाने वाले खुद स्वरूप है, दूसरों को सिखाना। अच्छा, और एक चीज, एक बहुत सूक्ष्म चीज, फिर हम दूसरों को ज्ञान क्यों सुनाएं? हम ही तो संपूर्ण बने नहीं है, हम तो यात्री है, फिर क्लास क्यों कराएं? ज्ञान क्यों सुनाएं? कोर्स क्यों सुनाएं? जैसे कभी एक बहन हमसे कह रही थी, अरे हम क्या कोर्स कराएं, हम खुद ही अशांत है, क्यों कराएं? इसका भी एक कारण है। सबसे पहला, क्लास कराना कहो या कोर्स कराना कहो या ज्ञान सुनाना कहो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस बात में संपूर्ण हो गए हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, ये कराते कराते हमारा अटेंशन और जागृत हो जाता है। हम उदास है तो मनोरिंद्रा दादी क्या कहती थी बहनों को? जाओ जाके कोर्स करो, कोर्स कराते कराते ही किस पे खुद दुखी हो तो किस पे कोर्स कराओ, सुखी कैसे हो, सदा खुश कैसे रहे, ये टॉपिक लो, खुद ही लेना, मुझे ये टॉपिक चाहिए। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि जो सदा खुश रहो इस पर बोल रहा है वो खुद अंदर से दुखी है। दोनों ही चीजें, एक तो ये, दूसरा ज्ञान सुनाना हमने ही किए हुए पापों का पश्चाताप है। सेवा क्या है? सेवा इसलिए नहीं खुश हो रहे, दूसरों की सेवा कर रहे, रहम दिल ये तो है, पर सेवा करने का एक कारण ये भी है, ये हमारे पश्चाताप का एक साधन है सेवा। हमने पाप इतने किए हैं, विकर्म इतने किए हैं, पूर्व जन्म में नहीं, ज्ञान में आने के बाद, इसलिए अब सेवा से उसका क्षमन करो, इसलिए सेवा, ये भी एक कारण है सूक्ष्म। इसलिए विकर्म ज्यादा किए ना तो सेवा ज्यादा चालू करो, अभी हड्डी हड्डी लगा दो अब सेवा। किसी को सुनाना यही सेवा नहीं है, चिंतन करना भी सेवा है, सुनाना एक लास्ट है। 99% तो हम चिंतन करते रहे, मनन करते रहे, 1% लास्ट में अगर अवसर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो बहुत ही अच्छा, नहीं मिला तो भी ठीक, मिला तो ठीक, क्योंकि फायदा दोनों तरफ हमारा ही है, चाहे हम सुना रहे हो या न सुना रहे हो, हमारी स्थिति सेम रहे, चाहे हम मौन में हैं या तो सेवा में हैं, स्थिति सेम रहे। ऐसा नहीं कि जब सुना रहे तो स्थिति बहुत ऊंची चली जाए और नहीं सुना रहे तो सीधा नीचे चले जाए, ये भी ना हो। तो ये कितनी बातें हो गई? 14 बातें हैं। फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला बताया, एक्सेप्ट कर लो कि मैं दुखी हूँ, मैं उदास हूँ। ए फॉर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कर लो इसको। बी फॉर बाथ, बाथ अर्थात अच्छा जाके स्नान करो, एक आध घंटा बैठ के। सारी सफाई, इंटरनल सफाई, दो प्रकार की सफाई होती है, एक है बाह्य सफाई, एक है आंतरिक सफाई, एनिमा, वो आंतरिक सफाई है जिसमें अंदर का मल बाहर निकल जाए और शरीर शुद्ध हो जाए। सॉल्ट वाटर बाथ, शंख प्रक्षालन या कोलोन इरिगेशन थेरेपी, एनिमा, ये सब क्या है? इंटरनल सफाई है। अगला क्लीन, क्या क्लीन करना है? सब कुछ साफ करना। अगला एक्सरसाइज, अगला एक एक्सरसाइज कोई भी हो सकती है। डी 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 फॉर डोंट रिमेन क्वाइट, मतलब किसी के साथ शेयर करो, चुप नहीं बैठो, अंदर जो अंदर दबा है ना, कोई अगर ऐसा व्यक्ति है कि जिस पर विश्वास है उससे शेयर करो, पर ऐसा नहीं कि हम किसी के साथ अपनी बातें शेयर करो और वो दूर दूर तक वो बातें फैला दे उल्टे तरीके से। ऐसे व्यक्ति के साथ उससे तो अच्छा शेयर करना है तो बाबा के साथ शेयर करो, नहीं तो कोई जिस पर विश्वास है उससे, या तो डायरी में लिखो ये चीज़। तीसरा, पांचवा एक्सरसाइज, सिक्स्थ इमोशंस आउट, लिख रोलो, दबाओ नहीं उसको, एक तो रोना है उसमें, या तो अपना गुस्सा निकाल दो, वो कहते हैं ना तकिए पे जाकर उसको बॉक्सिंग करो। तकिए को मारो। अभी क्या करें अंदर, जैसे एक व्यक्ति है उसका बॉस उसको इतना सताता है उतना सताता है, उसने क्या किया, अपने बॉस का एक फोटो लिया, उसका फोटो अपने घर पे लगा के रखा, जैसे ऑफिस से आता है अपना जूता निकाल के वो फोटो को मारता है। उधर तो मार नहीं सकता है। अंदर जो दबा के रखा है ना उसकी पिटाई करता है रोज। अभी क्या करें अंदर, ये संसार के लोगों की बातें हैं। अंदर ये लाफ्टर क्लब क्या है, लाफ, हंसते जोर जोर से हंसो, हंसो हंसो हंसो, निकालो अंदर से, पर अंदर नहीं दबा के रखना है, निकाल दो उसको जो भी है। अगला गेम्स, कोई भी गेम्स। अगला हॉबीज, अगला स्लीप, इंडल्ज इन नैप, इंडल्ज इन स्लीप, आई फॉर सो जाओ, ये कई लोगों को इनको बहुत प्रिय है। आराम वाली बातें आती तो एकदम बड़ी खुशी होती है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। उसके बाद जे फॉर जर्नलिंग, लिखो अपनी डायरी में, पर डायरी का अभ्यास रोज का हो, नहीं करते हैं तो आज से लिखना चालू करो। अगला काइंडनेस या सेवा, या तो बारहवा लाइट, अपने आप को प्रेम करो, लाइट कर दो अपने आप को। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण, जरूरी नहीं है हर प्रश्न का उत्तर हमारे पास हो, इसको स्वीकार करो। जरूरी नहीं है कि जीवन में जो कुछ हो रहा है उस हर चीज का उत्तर ये क्यों हुआ, बाबा कहते ना ज्ञान आदि मध्य अंत तुमको पता, पर नहीं पता अब क्या करें, जब पता चलेगा तब देखेंगे, अभी मुझे नहीं पता ये ऐसा इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं पता, नो आंसर, ये स्वीकार कर लो। अगला मूव आउट और चौथा, चौदहवा प्रकृति नेचर, ये 14 बातें हैं। ये जब भी उदास लगे तो इनमें से कुछ भी करो और अपने आप को क्या करो। और बाबा को खत ही लिखना है तो कौन सा लिखो, कौन सा खत लिखो, वो दिल की दवात वाला सच्चा खत, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल ही मेरा दिल है, एक बस फूल भेज दिया उतना ही काफी है। ओम शांति।
दिल की दवात में कलम डुबो कर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ, यादें जिगर की सियाही लेकर हाले दिल सब सच लिखता हूँ। बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ, शाम सवेरे याद में तेरे बीते दिन और बीते नैना, तेरे ख्यालों रहूं हर पल, तुझको ही देखे ये मेरे नैना, लगता है बाबा हाथों में तेरे, हाथ सदा दे कर चलता हूँ।
दिल की दवात में कलम डुबो कर
बाबा तुझे एक खत लिख, मन में बसी है मूरत तेरी, दिल में है तेरी तस्वीर, परम धाम से आकर बाबा बना रहे सबकी तकदीर, खत का सार यही है बाबा, सम्मुख मिलने को लिखता हूँ। तुझे एक खत लिखता हूँ,
यादें जिगर की सियाही लेकर
हाले दिल सब सच लिखता।